अनेक प्रकार की आत्माओं का संसर्ग होता है, संपर्क होता है। बाबा से कोई आत्माओं की दूरी बढ़ती है, कोई की घटती है, बहुत सारी ऐसी बातें पैदा होती है जिससे व्यक्ति वृत्ति प्रति और वाचा चारों में अनेक प्रकार के फेरबदल होते रहते हैं। शुरू शुरुआत में जब कोई आत्मा ज्ञान में आती है, ईश्वरीय नॉलेज की गुह्यता को समझती है, तो सात्विक स्टेज में होने के कारण हलचल ना के बराबर होती और बाद में आपस में अनेक आत्माओं के विचार सुनते 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 क्योंकि कान से जो कुछ सुना जाता है, आंख से जो कुछ देखा जाता है, उसका असर जरूर पड़ता है। एक दूसरे के विचारों को सुना जाता है, विचारों का लेन देन किया जाता है, तो बाबा की बातें धीरे धीरे भूल जाती हैं और आपस में एक दूसरे की बातों का दृष्टि का वृत्ति का वाचा का प्रति का संक्रमण होने लगता है। जो समर्पित वर्ग है उसमें भी वही होता है और जो अपने को समर्पित समझते हैं उनमें भी यह संक्रमण होता है। जो समर्पित भी नहीं है प्रैक्टिकल में और अपने को समर्पित नहीं समझते हैं उनका तो फिर कहने क्या, उनमें तो परिवर्तन होना ही होना है, अवस्था अप एंड डाउन होनी ही है। हालांकि उनके लिए भी बाबा ने बताया है गो सून कम सून, बाबा के पास जल्दी आओ और जल्दी वापस जाओ, वापस जाना है ईश्वरीय सेवा के लिए। सागर में आकर के बादल भरे और वापस जाकर के बरसे, खाली हो जाए फिर बाबा के पास आए। लेकिन होता क्या है, बाहर की दुनिया में जाकर के बाहर की दुनिया का ऐसा रंग लगता है, ऐसा संग लगता है कि बाबा की बात भूल जाती है। गलतियां भी करते रहते हैं, कोई कोई पोतामेल भी लिखते रहते हैं, कोई तो लिखते ही नहीं और लिख करके बाबा के पास भेजते भी रहते हैं। पोता मेल एक बार माफ होगा, दो बार माफ होगा, तीन बार माफ होगा, बार बार कहां तक माफ होगा? जब तक बाबा के सामने पहुंचेंगे नहीं, एक दूसरे से जो लेते हैं उन ली हुई बातों का जो असर पड़ता है वो धुलेगा कैसे? अंदर फिर घुटते रहते हैं, कुछ फैसला कर लेते हैं, कुछ ठंडे हो जाते हैं, कुछ एक दूसरे के ऊपर दूसरा दोषारोपण करने लग पड़ते हैं और ऐसे होते होते अवस्था बिल्कुल नीचे जाती है। ये तो हुई नॉन सरेंडर्ड वर्ग की बात अथवा जो अपने को सरेंडर नहीं समझते उनकी बात। जो समर्पित हैं उनमें दो प्रकार के हैं, एक तो ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी बात को समझा नहीं है और माँ बाप ने उनको अर्पण कर दिया है और मजबूरी में आकर के बैठ गए, तो उनकी बुद्धि वृत्ति तो बाहर की दुनिया में ही जाएगी। भले मधुबन में बाबा के पास रहते हैं या बाबा ने जो स्थान निश्चित किए हैं, मिनी मधुबन बनाए हैं, उन स्थानों पर रहते हैं, लेकिन बात की गहराई को न समझने के कारण उनकी वृत्ति और दृष्टि जो है बाहर की दुनिया में जाती है। उनका भी किनारा नहीं लगता। भले सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक वातावरण उनको अच्छा मिला हुआ है, ज्ञान का वातावरण मिला हुआ है, तीन चार बारी योग का वातावरण मिला हुआ है, लेकिन बुद्धि का जितना संग होगा उतना ही प्राप्ति होगी, वो भी रह जाते हैं। थोड़ी सी आत्माएं ऐसी हैं जो वास्तव में समर्पित भी हैं, अपने को समर्पित समझती भी हैं, और बाबा जैसे चलाना चाहता है, जो बात सुनाना चाहता है उसको वैसे ही धारण करती हैं और चलती है। लेकिन अंतर क्या पड़ता है? अंतर हुजूम का पड़ता है। एक तो आने वाले जिज्ञासु, बाहर की दुनिया से आने वाले जिज्ञासु, विकेश से आने वाले जिज्ञासु, और अंदर के ब्राह्मण परिवार के माने एडवांस पार्टी के ही कुछ ऐसे जिज्ञासु जो बहुत अंदर से तहस नहस हुए पड़े, उनकी बातें सुन सुन करके उनके ऊपर असर पड़ता है। बाबा के संपर्क संसर्ग में रहते हुए भी उनमें कोई कोई में ऐसा होता है कि बाबा से पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये भी यही कहेंगे कि पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, जो आत्माएं अनेक जन्म बाबा के संपर्क संसर्ग में रही हैं, उनको तो कोई आपत्ति नहीं होगी, बाबा से पूछेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, कोई बहाना बनाने का उनको मौका नहीं मिलता। लेकिन ये सबके साथ तो जैसा हो नहीं सकता। बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो दूसरों के प्रभाव में आ जाती, संगी साथियों के प्रभाव में आ जाती हैं और बाबा से उतना संपर्क संसर्ग नहीं रख पाती। तो टोटल मिलाकर के ब्राह्मण परिवार की चौथी अवस्था जब आती है, जो अभी तक पोता मिल आ रहे हैं, जिनसे ये देखा जाता है कि जो पुराने पुराने हैं वो अंदर अंदर में बहुत सी बातों को लेकर के घुटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। घुटते घुटते ये हालत पैदा हो जाती है कि जो क्लासेस हैं वो भी करना छोड़ देते हैं। जो गीता पाठशालाएं बनाई गई हैं, जिस उमंग उत्साह से जिस समय गीता पाठशालाएं बनी थी, जिस उमंग उत्साह से उस समय जाते थे, शुरुआत में लेनदेन करते थे, सेवा करते थे, सर्विस के समाचार सुनाते थे, उन सब बातों में खंडास आती जाती है। भले संगठन के प्रोग्राम होते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, वो इकट्ठा होना अपनी प्योरिटी की यूनिटी के आधार पर नहीं है, वो सिर्फ ज्ञान की ऐसी यूनिटी है, ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा है जो इस समय उनको चला रही है। अब ये इंडिविजुअल प्योरिटी बढ़ाई कैसे जाए? प्योरिटी चार प्रकार की है, सबसे ऊंची से ऊंची और गहरी से गहरी प्योरिटी है वृत्ति की, वाइब्रेशन की। जो पवित्र आत्माएं होंगी, जितनी जास्ती पवित्र होंगी, उनके वातावरण में आने मात्र से दूसरे जो हैं वो सुख का अनुभव, शांति का अनुभव करेंगे, उनके वाइब्रेशन चेंज होने लगेंगे। बहुत सी बातें पूछे बगैर ही उनकी समाधान हो जाएंगी। जैसे परमधाम से जाती पवित्र धाम कोई नहीं होता, ऐसे ही उन आत्माओं के वाइब्रेशन इतने पवित्र होंगे कि उनके जैसे जैसे नजदीक पहुंचेंगे, वो नजदीक आने मात्र से ही उसमें परिवर्तन दिखाई देगा, समीप पहुंचने वालों में। ये हुई वृत्ति की पवित्रता। वृत्ति कहते हैं हरेक मनुष्य आत्मा के मन से जो वाइब्रेशन फैलते हैं। वाइब्रेशन का चक्र चारों तरफ फैलता है, वो चक्र है वृत्ति की पवित्रता। जिस प्योरिटी की पराकाष्ठा से राधा कृष्ण का जन्म होगा, आपने लक्ष्मी नारायण के चित्र में देखा होगा, राधा कृष्ण फिर भी एक दूसरे से दृष्टि ले रहे हैं, उनकी पवित्र दृष्टि का संक्रमण एक दूसरे में हो रहा है। माने राधा की दृष्टि कृष्ण में डूब रही है और कृष्ण की दृष्टि राधा में डूब रही है। तो उनको दृष्टि का मेल दिखाया गया है, लेकिन उनसे भी ऊपर की स्टेज में जो लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, वो एक दूसरे को दृष्टि से भी नहीं देख रहे। उनमें कौन सी ऐसी शिष्ट है कि दृष्टि से संक्रमण किए बगैर, मिले बगैर राधा कृष्ण जैसे श्रेष्ठ बच्चों को जन्म देते हैं? लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो 30x40 इंच का पुराना चित्र है बाबा के समय का, उसमें राधा कृष्ण के ऊपर जो लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं, वो कौन सी वृत्ति में खड़े हैं? एकदम सामने है उनकी दृष्टि, या एक दूसरे को देख रहे हैं? देखते भी नहीं है। वो वृत्ति मात्र से ही उनका संक्रमण हो रहा है, संसर्ग हो रहा है। कोई कहेगा ये कैसे हो सकता है? मोर का मिसाल तो राधा कृष्ण के लिए लागू हो सकता है कि भाई मोरनी आंसू पीते हैं, आंख से निकला हुआ जल पीने से उनका संसर्ग हो जाता है, लेकिन वृत्ति मात्र से संसर्ग कैसे संभव है? एक पपीते का पौधा होता है, उसमें ये शिष्ट है, उसका नर वृक्ष और मादा वृक्ष मीलों दूर से अपने वृत्ति को खींच लेता है। नर की वृत्ति मादा खींचती है, दूर से ही खींचती है, और उसमें फल आने लग पड़ते हैं। तो जड़ पौधों में जब ये वृत्ति होती है और वो इतनी दूर से अपना बीज खींच सकते हैं, तो मनुष्य तो उनसे ज्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है? ज्यादा ही पावरफुल है। माना 4.5 लाख जो जन्म देने वाले माता पिता हैं, जो विशेष चुनी हुई एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, उनको उस स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा। जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण की स्थिति दिखाई गई है, उस प्योरिटी से राधा कृष्ण जैसे श्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण बच्चों का जन्म होगा। राधा कृष्ण उस ऊंची स्टेज को नहीं पहुंच सकते, वो दृष्टि मात्र की प्योरिटी तक ही पहुंचेंगे, लेकिन उनके माँ बाप 16 कला संपूर्ण से भी ऊपर पहुंचेंगे। वो सूर्यवंशी कहे जाते हैं। सूर्य कभी कलाओं में नहीं बांधा जाता, तो सूर्यवंशी बच्चों की भी कभी कलाएं बांधी नहीं जा सकती। वो वृत्ति मात्र से ही इतने पावरफुल होंगे कि जो कार्य आज विज्ञान कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, बिना तार के आधार पर बेतार का तार, वायरलेस या कंप्यूटर कहिए, दूर बैठे ही सारे वाइब्रेशन खींच लेता है, सारी आवाज खींच लेता है, चित्र भी दिखाई देता है, कनेक्शन कुछ भी नहीं है।
तो ये स्थिति हम आत्माओं की भी बनेगी। जब हम आत्माओं की ये स्थिति बनेगी, उस समय हम दूर बैठे भी कोई से बात कर सकेंगे, कोई के वाइब्रेशन ले सकेंगे। वो मनमना भव की पराकाष्ठा की स्टेज होगी। स्पष्ट किसी का चित्र देख सकेंगे। ये कॉन्सेंट्रेशन की तीव्रता होगी। इस स्थिति तक हम बच्चों को पहुंचना है, लेकिन अभी स्थिति क्या है? पहले बाबा मुरलियों में बोला करते थे कि बच्चे बाचक से कोई विकर्म हो जाता है, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। अगर कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म हुआ, माने व्यभिचार हुआ, पाप कर्म हुआ, एक बाप दूसरा न कोई इस वृत्ति से नीचे उतर करके कोई और से संसर्ग किया, वाचा से, दृष्टि से या कर्मेंद्रियों से, तो पाप बन जाएगा। और अभी तो अव्यक्तवाणियों में क्या बोलने लग पड़े कि बच्चे संकल्पों से भी अगर कोई तुम गलत संकल्प करते हो, व्यभिचारी संकल्प करते हो, तो उसका भी पाप बनता है। पहले ज्ञान कम था, अभी हम बच्चों के अंदर ज्ञान ज्यादा है, तो जो जितना ज्यादा ज्ञानी है उसको तो और ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन बजाय अलर्ट रहने के अलबेलापन और ही ज्यादा बढ़ता जाता है। ऊंचे उठने की एक ही इकाई बताई कि बच्चे अपना अमृत बेला सुधार लो। अमृत बेला सुधारा तो सब सुधर जाएगा। लेकिन अभी हाथ उठवाया जाए कि 4:45 से पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या एक घंटे का पुरुषार्थ कौन कौन करते हैं, तो कितने हाथ उठाएंगे? उठाइए जरा रेगुलर। देखो भाइयों के बहुत कम हाथ उठे हुए हैं और कन्या माताओं के हाथ ज्यादा उठे हुए हैं। और लौकिक पढ़ाई में भी ऐसे ही होता है। लौकिक पढ़ाई में जो बच्चे हैं वो कम पास हो रहे हैं और जो बच्चियां हैं वो ज्यादा पास हो रही है, और पास होने के बाद काम भी अच्छा करके दिखाती है। लेकिन या तो प्रवृत्ति मार्ग है, पांडवों के लिए बोला है शक्तियों से शक्ति लेकर के आगे बढ़ते रहे, और शक्तियां पांडवों से सहयोग लेकर के आगे बढ़ती रहे। पांडवों के बगैर शक्तियां नहीं चल सकती, शक्तियों के बगैर पांडव नहीं चल सकते। दोनों के बीच में है शिव बाबा। अब कारण क्या है जो इतना अलबेलापन आता जाता है? कारण है आपस में ही एक दूसरे से लेन देन करके एक दूसरे से संतुष्ट हो जाना। बाबा कहते हैं दिल की बात दिलावर से कहो। आपस में ही एक दूसरे को दिलावर बनाए लेते हैं, आपस में ही एक दूसरे की दिल लेने और देने वाले बन जाते हैं। तो बाबा तो एक तरफ हो गया ना। बाबा बच्चा भी अपने घुमपी मार के दूसरी तरफ बैठ जाता है। अब करना क्या है? करना ये है कि जब जब अवस्था अपनी नीचे उतरती है तो उसका कारण देखना चाहिए। बाबा ने ये बताया है कि बच्चे याद और सेवा, इन दोनों का बैलेंस जरूर रखना है। याद में भी रहें और सेवा भी करें। या तो याद करने में लग जाते हैं, वो भी बैठने वाली याद, या तो सेवा करने में लग जाते हैं, उस समय बाबा की याद भूल जाती है, क्योंकि बाबा से प्यार ही नहीं है तो याद कैसे होगी। याद कोई दूसरी चीज थोड़ी है, याद माना प्यार, और प्यार भी नकली नहीं कि आधा प्यार बाबा से और आधा प्यार दूसरों से, नहीं। बाबा तो चाहते हैं मां में एकम याद करो और किसी को बीच में नहीं डालो। अगर और किसी को बीच में डाला तो पाप बस नहीं होंगे। निरंतर याद होनी चाहिए, लगन पूर्वक याद होनी चाहिए और फिर सहज भी होगी। तो पछताना पड़ता है कि ऐसा होता क्यों नहीं है। यह कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है, ये बात ठीक है। 63 जन्मों की हिसाब किताब है, वो लास्ट में आकर के बहुत जोर मारते हैं। जिन आत्माओं को अभी अपनी परिपक्व स्टेज दिखाई भी पड़ती है कि नजदीक है मंजिल के, वो भी बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। जिसके लिए बाबा ने बोला है कि 100 मन के तो फिर भी पुरुषार्थ में अप एंड डाउन में ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन 8 जो है वो सबसे ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। अभी अभी एकदम ऊंची स्टेज में और अभी अभी एकदम डाउन। तो जो 8 है वो जब ऊपर नीचे होंगे तो उनके नीचे कार्य करने वाली जो दूसरी आत्माएं हैं उनके दुख की वो तो जरूर ऊपर नीचे हो जाएंगी। फिर यूनिटी बनेगी कैसे? बनेगी, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक को जब अनेकों का सहयोग मिलता है तो परिवर्तन जरूर होता है। जैसे बाबा ने बोला, दे दान तो छूटे ग्रहण, रिश्ता ग्रहण छूटे है। अरे ग्रहण किसको लगता है? सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण माना जाता है, जो उनको ग्रहण लगता है। ज्ञान में हम समझते हैं कि ये विकारों का ग्रहण सूर्य को तो नहीं लगता। सूर्य तो आग का गोला है, उसके ऊपर तो पृथ्वी की या चंद्रमा की परछाया पड़ ही नहीं सकती, वो तो निर्लेप आत्मा है। तो हम ज्ञान में जानते हैं कि चंद्रमा के ऊपर एक चलता है, वो प्रभावित तो होता है। धरणी रूपी कन्या माताओं का प्रभाव या परछाया उसके ऊपर पड़ सकती है और वो अंधेरे में आ सकता है। तो बाबा ने बोला, दे दान तो छूटे ग्रहण। चंद्रमा की आत्मा को बाबा तो श्रेष्ठ समझते हैं। श्रेष्ठ समझने के कारण ही ब्रह्मा चंद्रमा को सबसे आगे बढ़ाया हुआ है। तो हम बच्चों का भी फर्ज बन जाता है कि हम उस आत्मा को सबसे जास्ती योगदान दे करके, कौन सा दान देना है? विचारों का दान? अरे विकारों का दान तो शिव बाबा को देना है, लेकिन आत्माओं को आपस में कौन सा दान देना है, और उन आत्माओं में जो श्रेष्ठ आत्मा है उसको कौन सा दान देना है? योगदान। योगदान माने वाइब्रेशन का ध्यान। जैसे कोई नजदीकी संबंधी होता है उसमें हमारा बहुत प्यार होता है तो हमारे दिल में ये भावना पैदा होती है ये आत्मा विज्ञान में आ जाए। अमृत वेले उठ करके हम उस आत्मा को विशेष सर्च लाइट देते हैं और वो परिवर्तन हो जाती है। तो ऐसे ही वो नैया है, शक्ति की नैया है, बोलती है, लेकिन एक पक्की बात है क्या? डूब नहीं सकती। तो हम बच्चे जानते हैं कि नैया डोल रही है और डूबे भी क्यों? डूबने का तो सवाल ही नहीं, डोलने भी नहीं चाहिए। अभी अंत समय आ गया तो हम बच्चों के वाइब्रेशन से वो परिवर्तन होना है तो होगा जरूर। तो संगठन वाइब्रेशन के, संगठित वाइब्रेशन के परिवर्तन से ही तो होता है। अगर होना नहीं है तो स्वर की स्थापना नहीं होनी। तो संगठित वाइब्रेशन का असर पड़ता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, जो भी धर्म पिताएं हैं उन्होंने ये नियम बनाया कि सब इकट्ठे हों एक स्थान पर। स्थान का भी बहुत महत्व हो जाता है और उस टाइम का भी बहुत महत्व हो जाता है जहां सब इकट्ठे होते हैं। एक तरह का पर्व हो जाता है। तो वाइब्रेशन का जो जखीरा है एक जगह इकट्ठा होने से उसका प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव तत्कालीन असर करता है। अभी हम ब्राह्मण बच्चों को ये देखना है कि बाबा मनमना भव मनमना भव कितने वर्षों से चिल्ला तो रहा है। इसका अर्थ हम बच्चों ने समझ लिया कि जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प यही मनमना भव है। तो बाप इस समय क्या चाहता है? जो बाप चाहता है वो इच्छा हम बच्चे पूरी करें, वही संकल्प चलाएं, वही वाचा चलाएं, वही कर्मणा से हम वो कार्य ऐसा करें जिससे वो कार्य संपन्न। रुद्रमाला और विजयमाला, लेकिन विजयमाला बाद की चीज है। पहले तो जो सूर्यवंशियों की रुद्रमाला है उसमें ही दाई ओर और बाई ओर दो ग्रुप से मुख्य रूप से कहे सूर्यवंश और चंद्रवंश। ब्रह्मा है चंद्रवंश का और बाप है सूर्यवंश। ब्रह्मा मां ज्ञान चंद्रमा है और ज्ञान सूर्य बाप और प्रजापिता ज्ञान सूर्य है। इन दोनों का अगर वृत्ति में वाचा में कर्म इंद्रियों से एका नहीं होता तो ब्राह्मणों में कभी नहीं एका हो सकता। पहले एक इकाई सुधरेगी तब नंबर बार दूसरी इकाई इकाइयों को सुधरने का। तो संगठन की पावर बहुत कुछ कर सकती है। वृत्ति के आधार पर दूर बैठे भी हम बड़ी बड़ी भारी सेवा कर सकते हैं। ये संगठन की शक्ति प्योरिटी से आती है। जिन जिन आत्माओं ने संगम युग में जितनी जितनी प्योरिटी इकट्ठी करने का पुरुषार्थ किया होगा वो उतना ही सहयोग दे सके। अगर पुरुषार्थ नहीं किया होगा या कम किया होगा या जैसा किया होगा तो सहयोग भी उतना ही दे सके। अभी यह समय है, अभी तो बाबा मनसा सेवा के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। 60-62 वर्ष हो चुके, वाचा की कितनी भारी सेवा की है। भाग दौड़ करके कर्मेंद्रियों से कितनी जबरदस्त सेवा की है। उस सेवा से रिजल्ट कितना निकला, ना के बराबर रिजल्ट निकला। अभी याद करते करते प्रैक्टिस जरूर नंबर वार ऐसी हुई है कि बच्चे अगर हिम्मत करें तो ब्राह्मणों की दुनिया में खास करके एडवांस पार्टी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। अपने घर के अंदर ही अगर पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है तो बाहर परिवर्तन कैसे होगा। घर कोई ईंटों को तो नहीं कहा जाता है। एडवांस पार्टी के ब्राह्मण परिवार में पहले घर की पहली इकाई तो माता पिता है। और माता पिता के वाइब्रेशन मिलकर के जब तक एक नहीं होंगे तब तक बच्चों में परिवर्तन नहीं आ सकता। और बच्चों के हाथ में है जैसे यज्ञ के आदि में हुआ स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से बिना ज्वाला भी प्रज्वलित हुई, निमित्त कौन बने, ब्रह्मा बाप और आहुति का काम किसने किया, ब्राह्मण बच्चों। ऐसे तो ब्राह्मण बच्चों को पहले पहले न्यूट्रल रहना चाहिए लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो माँ से पैदा होता है, माँ का प्यार लेता है तो माँ की तरफ रुझान तो हो ही जाता है। माँ की तरफ ज्यादा रुझान होने के कारण सारा प्यार बच्चे का और माँ का बच्चे की तरफ जाता है, बल बच्चा बाद में समझदार होता है। लेकिन पहला फाउंडेशन प्यार का तो माँ का बच्चे की तरफ, बच्चे का माँ की तरफ पड़ गया ना। ये तो ज्ञान है, बाप का ज्ञान कि बाप ही से हमको वर्षा मिलता है ब्रह्मा के द्वारा। जैसे ये माइक रखा हुआ है, माइक के द्वारा आवाज मिलती है लेकिन बोलने वाला होगा तभी तो फैलेगी। तो ऐसे ही बाप है वर्षा देने वाला लेकिन ब्रह्मा बीच में मीडिया निमित्त बना हुआ है। अगर माइक में ही मशीनरी खराब है, खिर खिर की आवाज होगी तो आवाज चारों तरफ ठीक से पहुंचेगी नहीं। ऐसे ही माता मीडिया है। जैसे लौकिक दुनिया में घर परिवार को संभालने में, स्वर्ग बनाने में या नर्क बनाने में माँ का सबसे बड़ा योगदान होता है। माँ इतना बड़ा योगदान देती है, इतना बड़ा सहयोग करती है कि वो अपने को क्या लेना है वो भी भूल जाती है। भारतीय परंपरा में तो अभी तक ऐसा रहा। छोटी बच्ची है तो माँ बाप के प्रति समर्पित है, शादी हो जाती है तो पति के प्रति समर्पित है, पति शरीर छोड़ देता है तो माँ बच्चों के अधीन हो जाती है, बच्चों के प्रति समर्पित हो जाती है। भारतीय परंपरा में माता को वर्षा नहीं मिलता रहा, माता सब कुछ बच्चों के लिए अर्पण करती रही। माँ खुद वर्षा लेने की परवाह नहीं करती, बच्चों को वर्षा दिलाने के निमित्त बनती है। वही कार्य अलौकिक परंपरा में भी होता है। जगत माता है, फाउंडेशन के पत्थर का काम करती है। फाउंडेशन का जो पत्थर है वो जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, किसी को दिखाई नहीं पड़ता, कोई जानता नहीं कि ये सारी मकान, सारे मकान की नींव उसके ऊपर है। ऊपर के कंगूरे सबको दिखाई पड़ते, कंगूरों की शोभा सबको दिखाई पड़ती है, लेकिन फाउंडेशन के बारे में महिमा पा पा करके करते हैं। कोई भी मुरली को उठा लिया जाए, गीता माता की जितनी महिमा मुरली में की होगी, भारत माताओं की जितनी महिमा मुरली में की होगी, या माताओं की जितनी महिमा बाप करते हैं, कहते हैं कि बाप माताओं के लिए आए हैं। ऐसा कहने में कन्याओं को कोई फीलिंग आने की बात नहीं है। बाबा तो कहते हैं कि मैं कन्याओं को भी माता बना देता हूं, क्योंकि सभी जगत माता हैं। प्योरिटी का माता सबसे ज्यादा आगे रहता है। भारत की माताएं जो स्वर्ग का दरवाजा खोलने वाली है, ज्ञान में आने के बाद उनकी दृष्टि की प्योरिटी, वृत्ति की प्योरिटी, वाचा की प्योरिटी और कर्मचारियों की प्योरिटी, ये सबसे बड़ा काम करती है। पवित्रता के आधार पर ही परिवर्तन होता है। तीन मूर्तियां हैं, ब्रह्मा की मूर्ति, शंकर की मूर्ति, लेकिन परिवर्तन शक्ति किसके कौन सी मूर्ति में उदी हुई है? विष्णु की मूर्ति में। ब्रह्मा के द्वारा कितने वर्ष काम हुआ यज्ञ में, शंकर के द्वारा भी कितना वर्ष कार्य होता है, लेकिन परिवर्तन समय में जाकर के तब ही होता है जब पवित्रता की प्रतिमूर्ति विष्णु, वैष्णो देवी वो प्रत्यक्ष होती है। बाबा तो कहते हैं हर आत्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का पाठ अदा करने वाली है। हर आत्मा के अंदर ये तीन पाठ बुधे हुए हैं। हर आत्मा अपने लिए ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर का पाठ अदा करने वाली है। तो हम बच्चों को अपनी वैष्णवी वृत्ति को अब जगाने का टाइम आ गया। अभी परिवर्तन होना ही होना है, ये बुद्धि में पक्का करना चाहिए। 63 जन्म कुंभकर्णी आत्माओं के प्रभाव में आते रहे। बाबा कुंभकर्ण किसे कहते हैं? कुंभकर्ण भारतवासी है या विदेशवासी? भारतवासियों को कुंभकर्ण कहते हैं। ज्यादा गुरु लोग कहाँ हुए भारत में? तो जो गुरुगिरी ज्यादा करते हैं, दूसरों को अपने तरीके से मोल्ड कर लेते हैं, वो गुरु होते हैं। वो गुरु कोई 63 जन्म में ही नहीं हुए हैं, ऐसे कि नहीं वो गुरु कोई ब्रह्मा कुमारियों बीकेज में ही बैठे हुए हैं। वो गुरु हमारी एडवांस पार्टी में भी बीज रूप में बैठे हुए हैं। बाबा जो बातें बताएंगे उन बातों को मोल्ड करके अपने स्वार्थ के अनुरूप मोड़ करके उनको अपने तरीके से बताने के आदि है। खुद भी अपनी अवस्था खराब खराब करते हैं और दूसरों की भी खराब कर देते हैं। खुद भी सत्यानाश करते हैं अपना और दूसरों की भी सत्यानाश कर देते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि गुरु लोग भोजन कैसे खाते हैं, भोजन जब खाते हैं तो सारी थाली जो है साफ करके धो करके पी जाते हैं। क्या वो हद के भोजन की बात नहीं है, हद के भोग लगाने की बात नहीं करते हैं बाबा? वो सन्यासियों का बेहद का प्योरिटी का भोजन है, जो भी आत्मा उनके हाथ में आती है सारी साफ करके रख देते हैं। वाचा से भी सारी साफ कर लेते हैं, सारा पोता मिल ले लेंगे। बाबा कहते हैं एक से सुनो और एक को सुनाओ, लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं, अनेकों से सुनते हैं और अनेकों को सुनाते हैं। बाबा कहते हैं एक से सुनना यह है अभिविचारी ज्ञान और अनेकों से सुनना यह है व्यभिचारी ज्ञान। ऐसे ही दृष्टि में भी, वृत्ति में भी और कर्मेंद्रियों के संसरण में भी हम उन गुरुओं से प्रभावित होते रहते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है हमारी प्योरिटी की थाली सफाचट हो जाती है। इसलिए उनका नाम रखा है बाबा ने हिरण्यकश्यप। क्या नाम रखा है? हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज, पा माने पीने वाले। जो सोने जैसी सच्ची सच्ची आत्माएं हैं उनके योग बल रूपी, लगाव रूपी, लगन रूपी जो काश्य है उसे तेज को पीने वाले हैं, सारा ही पी जाते हैं। इसलिए उनका नाम रखा गया हिरण्यकश्यप। तो ऐसी ऐसी आत्माएं जो बाबा की बात को मोड़ करके और अपने तरीके से अपने स्वार्थ में लगाने वाली है, उनसे इस समय बच करके रहना बहुत जरूरी है। किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए, किसी भी मनुष्य गुरु से प्रभावित हुए मन उसकी प्रजा बन गई। हमें तो बाबा राजा बनाने के लिए आया है, या किसी से प्रभावित होने वाली प्रजा बनने के लिए, बनाने के लिए आया है? हमें क्या बनना है? राजा बनना है, रानी भी नहीं। रानियां फिर भी राजा से प्रभावित होती है। हमें विजयमाला में भी नहीं जाना है। पाप की माला है रुद्रमाला, राजाओं की माला। जो जन्म जन्मांतर राजा बनकर के रहे हैं, राजाएं कभी किसी के प्रभाव में नहीं आते। हाँ, जो अपवित्र राजाएं हुए तो जितने जितने अपवित्र बनते गए उतना उतना प्रभावित होते गए। पहले द्वापर युग के आदि में एक मंत्री होता था, ब्राह्मणों को मंत्री बनाया जाता था। ये विश्वास रखते थे राजाएं कि ये पवित्र रहते हैं, इनके पवित्रता के वाइब्रेशन से हमें जो कुछ सीख मिलेगी वो अच्छी सीख मिलेगी, तो उनकी बात मान करके राजकार्य चलाते थे। बाद में जैसे जैसे राजाएं ज्यादा पवित्र बनते गए वैसे वैसे मंत्रियों की संख्या भी बढ़ती चली गई, और ये हाल बढ़ते बढ़ते आज क्या हाल हो गया है। आज गवर्नमेंट कैसे चलती है? मंत्रियों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है और ढेर सारे मंत्रियों की ढेर सारी मंत्रणा इकट्ठी होती है, तब राजकाज चलता है। तो अनेक मतों से रावण राज्य बन जाता है। अभी तो हमको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने वाला, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मंत्रणा देने वाला बाप आया हुआ है। अवेलेबल है, ऐसे कि नहीं वो हमको प्राप्त नहीं है। अभी तो कम्युनिकेशन के साधन भी बढ़ गए हैं। हम चाहें तो कदम कदम पर बाप की कीमत ले सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। हम आपस में ही एक दूसरे से बातों का संक्रमण करके और फैसला कर लेते हैं। अभी पूछी जाए तो जो भी पुराने पुराने एडवांस पार्टी के भाती हैं, उनके अंदर ढेर सारे ऐसे प्रश्न निकलेंगे। भले बाबा के सामने आकर वो बातें भूल जाते हैं, लेकिन घर जाते हैं, दुनिया में वायुमंडल में पहुंचते हैं, ब्राह्मणों के वायुमंडल में पहुंचते हैं, तो ढेर सारे प्रश्न घूमते रहते हैं और अंदर अंदर परेशान होते रहते हैं। परेशान परे की शान में पहुंचते रहते हैं। दूसरों की वाचा, दूसरों की दृष्टि, वृत्ति और कर्मेंद्रियों के कृत्य से प्रभावित होते रहते हैं। प्रभावित माना प्रजा, क्या फायदा हुआ बाप के आने का? बाप आया भी और बाप की जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज है, श्रीमत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है, उसको हम नहीं धारण कर सके जीवन में, तो पुरुषोत्तम संगम युग का फायदा क्या हुआ? कितने ऐसे हैं जो ये अनुभव करते हैं कि ये मौजों का जीवन है, सत्युग से भी ज्यादा श्रेष्ठ जीवन हमारा अब चल रहा है। सत्युग तो बाद में होगा, वो तो 16 कला संपूर्ण जीवन होगा, लेकिन संगम युग है 16 कला से भी ऊपर का जीवन। मौजों का युग है, मौज मनाने का युग है, अति प्रसन्नता का युग है। इससे ज्यादा शांति और किसी युग में हम शरीर के साथ अनुभव नहीं कर सकेंगे। चाहे तो अभी अनुभव कर सकते हैं। वो दुखों से मुक्ति का वर्षा अभी लेने का टाइम है। जीवन में रहते आनंदमय स्थिति का अनुभव करने का टाइम अभी है। अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया। खुद ऐसे श्रेष्ठ वायुमंडल में रहेंगे, श्रेष्ठ वृत्ति में रहेंगे, श्रेष्ठ वाइब्रेशन में रहेंगे, तो दूसरी आत्माओं को भी दान दे सकेंगे। अरे 108 की माला का जो संगठन है उसमें सब नंबर वार है। एक मन का सर्वोपरि है, सर्वशक्तिशाली है, तो एक मन का सबसे ज्यादा कमजोर भी है। लेकिन उस मणके में कोई विशेष ऐसी शिफ्ट भी है कि वो फूल के सबसे नजदीक है। माला में दो मणके ऊपर है। एक तरफ से माला का गिनना शुरू करेंगे तो लास्ट मणका होगा। लास्ट मणका होते हुए भी वो प्रभु की नजर में, सुप्रीम सोल की नजर में बहुत श्रेष्ठ मणका है। जरूर कोई ऐसी शिफ्ट रही होगी जिसके आधार पर बाप ने उसको अपने नजदीक रखा है। समीपता किस आधार पर आती है? बाप के समीप पहुंचने की विशेषता क्या है? सच्चाई और सफाई। जो आत्मा जितनी सच्ची होगी उतना बाप के नजदीक पहुंचेगी। तो रुद्रमाला के ऊपर के जो दो मणके हैं उसमें एक है माँ और दूसरी है बाप। ये दोनों मणके फूल है माने सुप्रीम फूल के बिल्कुल नजदीक है। जिन दो से ब्राह्मण बच्चों को विशेष वर्षा मिलता है। लेकिन स्नेह के सूत्र में जब तक पिरोए हुए नहीं होंगे ماں کو بچے سے اسنیہ ہوتا ہے, بچہ بیمار پڑ جاتا ہے, سخت بیمار ہے, جان کا خطرہ ہے, تو ماں کو ساری رات نیند آتی ہے کیا؟ نہیں آتی ہے نا, ساری رات کیسے جاگتی ہے؟ جاگ لیتی ہے نا, ایک رات بھی جاگتی ہے, دو رات بھی جاگتی ہے, لگاتار بھی جاگتی ہے. تو یہی پیار پریوار میں, وہ ماتا پتا والی جو آتمائیں ہیں, پتا کی بات چھوڑ دو, وہ تو سرو سمرتھ ہے, لیکن ماں کے پرتی جو پیار ہے وہ پریکٹیکل جیون میں انوبھو ہونا چاہیے نا. امرت ویلا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو الوکک پریوار میں اصلی پیار ہے اس کا فاؤنڈیشن ہی نہیں پڑا. آتما منتھن نہیں کرتی. لوکک دیہ بھان میں, دیہ اور دیہ کے سمبندھوں میں بدھی اتنی بزی رہتی ہے کہ دیہک سمبندھوں کی تو ذمہ داری یاد رہتی ہے, لیکن الوکک اور پارلوکک سمبندھ کی ذمہ داری کیا ہے وہ بھول جاتی ہے. پہلی مکھ بات ہے کہ جو بھی گیتا پاٹھشالائیں ہیں, ان گیتا پاٹھشالاؤں میں ہر ایک اسٹوڈینٹ کو اپنے ٹائم پر پنکچوئل پہنچنا چاہیے اور ڈیلی کلاس کرنا چاہیے. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ٹیچر کا ڈس ریگارڈ ہے, کلاس نہیں کرنا اتوا کلاس میں دیر سے پہنچنا اتوا کلاس میں پنکچوئل نہ ہونا. جن کے اپنے محلے میں گیتا پاٹھشالہ ہے ان کو اپنے گیتا پاٹھشالہ میں ضرور ایک گھنٹہ دینا چاہیے ایشوریہ سیوا کے لیے. یہی ایشوریہ سیوا ہے ایسے سمجھ کر کے, سنگٹھت ہو کر کے جو ہم وائبریشن پھیلاتے ہیں, بابا کی یاد میں بیٹھتے ہیں, وہ وائبریشن ہی بہت بڑا کام کر کے دکھائیں گے. ایٹمک انرجی کا کام کریں گے, وہ ہے ایٹمک انرجی اور یہ ہے آتمک انرجی. لیکن سنگٹھت ہو کر بیٹھیں گے ہی نہیں, جان کا لین دین ہی نہیں کریں گے, سیوا کے انوبھووں کا لین دین ہی نہیں کریں گے, پریوار کو پریوار ہی نہیں سمجھیں گے. تو کیسے چلے گا؟ گیتا پاٹھشالائیں کھلتی جاتی ہیں, ان کی سنکھیا بڑھتی جاتی ہے اور کلاس میں آنے والے اسٹوڈینٹس ندارد ہوتے جاتے ہیں. سب سمجھے بیٹھے ہیں, کہہ رہے گیتا پاٹھشالا میں جا کے کیا کریں گے, ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے گھر میں رہتے ہی یاد کر لیں. لیکن نہیں, سنگٹھن کا اثر پڑتا ہے. مسلمان لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ گھر میں رہ کر کے نماز پڑھنے کا جتنا ثواب ہوتا ہے اس سے دس گنا مسجد میں جا کر کے پڑھنے سے ہوتا ہے. جمعہ مسجد میں جا کر کے جو نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد سے بھی زیادہ دس گنا ہوتا ہے اس کا ثواب, اور جو اجمیر شریف میں جا کر کے پڑھتے ہیں وہ اس سے بھی دس گنا, اور کعبہ میں جا کر کے اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہ سو گنا اجمیر شریف سے بھی زیادہ. تو ملٹیفیکیشن ہوتا رہتا ہے. تو مہینے کا سنگٹھن کا جو کلاس ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, وہ تو مہینے میں ایک بار ہوگا, لیکن محلے کے اندر یہ جو گیتا پاٹھشالا کھلی ہوئی ہے اس میں دس گنا دس گنا دس گنا تیس دن بڑھائیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے یہ تو مسلمانوں والی بات سکھا دی. یہ مسلمانوں والی بات نہیں ہے, یہ مندر ہے, مسجد ہے, گرجا گھر ہے, گرودوارے, چاہے جہاں بھی چلے جائیے ہر جگہ یہ وقت دیکھنے کو ملتی ہے. اس کا کارن یہی ہے کہ ایک استھان پر سنگٹھت ہو کر کے हम जो बैठते हैं आपस में लेन देन करते हैं प्रभु की याद करते हैं उससे वाइब्रेशन में बड़ा परिवर्तन आता है, हमारे अंदर स्वयं भी परिवर्तन आता है। तो अपना परिवर्तन करेंगे, अपने परिवार का परिवर्तन करेंगे, तब तो विश्व परिवर्तन होगा। मूल बात को ही हम भूल बैठे, क्लास ही करना बंद कर दिया, तो ऐसे कैसे चलेगा? ये भी इम्प्योरिटी की निशानी है। हम कोई बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम कोई एक दूसरे से पढ़ाई थोड़े ही पढ़ते हैं। गीता पाठशाला में जो निमित्त बना करके बैठाए गए हैं वो तो निमित्त मात्र है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो निमित्त मात्र बना करके बैठाए गए हैं वही उच्च पद पावेंगे। अगर क्लास में आने वाले सभी स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है और क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स में से कोई ऐसे हैं जो सबको संतुष्ट करते हैं, खुद भी संतुष्ट, सर्व आत्माएं भी उनसे संतुष्ट, माता पिता भी उनसे संतुष्ट, तो वो ऊंच पद पा जाएंगे। टीचर टीचर की जगह रह जाएंगे। बाबा तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारी कोई प्रजा कुमारी बनेगी, कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई जरूरी थोड़ा ही है। निमित्त सिर्फ निमित्त मात्र बना करके बैठाया गया है, और अभी तो बेसिक नॉलेज के मुकाबले एडवांस में तो बहुत ज्यादा अंतर है। वहां तो गीता पाठशाला खुलने नहीं देते, हमारी आमदनी कम हो जाएगी। यहाँ तो जो भी युगल हैं उन सभी युगलों को परमिशन दी जाती है, अच्छा तुम अपने घर में अपनी गली में गीता पाठशाला खोल करके बैठो। जो ज्यादा होशियार युगल होगा, मेहनती होगा, दूसरों को मान रिगार्ड देकर के चलाने वाला होगा, उसकी गीता पाठशाला अच्छी चलेगी। ठीक से चलाने वाला नहीं होगा तो उसके पास कोई नहीं जाएगा। प्योरिटी की पावर ही खींच लेती है। तो अभी गफलत करने का टाइम नहीं है, अभी का टाइम बहुत वैल्यूबल है। बाप इस समय बाप के रूप में भी देख रहा है बच्चों को कि कितने बच्चे आज्ञाकारी हैं, टीचर के रूप में भी देख रहा है कितने बच्चे ईमानदारी से क्लास करते हैं, पंक्चुअल रहते हैं पढ़ाई में, रेगुलर रहते हैं। कितना आपस में एक दूसरे से दिल दिलावरी करते हैं और कितना बाप को दिल देते हैं, बाप का कितना दिल लेते हैं और बाप को कितना दिल देते हैं।
वफादारी मैं अपने अंदर देखना है, हम बाप के प्रति कितना वफादारी, जो बात बाप को ही बतानी है और किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो बात बाप तक ही सीमित रखते हैं। आप अपने एक दूसरे को बताते रहते हैं एक दूसरे का प्यार लेने के लिए, अरे हम तुमको ही बता रहे हैं, तुम और किसी को नहीं बताना। तो ये हो गई बेवफाई।